वो कत्लगाहों में शाख़े जैतून लेके फिरता रहा हमेशा, वो कत्लगाहों में शाख़े जैतून लेके फिरता रहा हमेशा, अगरचे बरसों से अपने काबिल के इरादों को जानता था।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान यूसुफ। आज का प्रोग्राम जनाब डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब की शहादत के हवाले से है। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान मारूफ दानिश्वर और मजहबी स्कॉलर थे। वो बहस मुबाइस में नहायत मतानत, संजीदगी और दयानतदारी के साथ कुरान व सुन्नत की बुनियाद पर अपने नुक्ते नज़र को पेश करते और हमेशा दलील की ज़बान से बात करते थे। वो हमेशा इस अमर के लिए तैयार रहते थे कि दलील और इस्तदलाल की बुनियाद पर ही उन्हें कायल किया जा सकता है, लेकिन यह मालूम हकीकत है कि दलील जहाँ नापैद होती है, दशनाम वहीं मौजूद होती है। उन्हें एक अरसे से शिद्दत पसंद तंजीमों की तरफ से मुसलसल धमकियाँ दी जा रही थीं कि वो जहाद, खुदकुश हमलों और मासूम इंसानों के कत्ल के हवाले से या तो अपनी राय को तब्दील करें या उन्हें बयान करने से गुरेज करें। उनके रुफका का भी यही इसरार था कि वो किसी महफूज इलाके में मुंतकिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हक गोई से काम लेते रहे। और आखिरकार दलील से आली एक मखसूस ग्रोह ने एक बुजदलाना कार्रवाई करके उन्हें गोली की जबान से हमेशा के लिए खामोश करवा दिया। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक ख़ान की इस अलमनाक शहादत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जनाब जावेद अहमद गामदी। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
गांधी साहब, डॉक्टर फारूक आपके करीबी रुफका में से थे, आप उनकी शहादत पर क्या कहना चाहेंगे?
डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान साहब मेरे अजीज भाई थे, मेरे दोस्त थे, हमदमे देरीना थे, कमोबेश 20 साल की रफाकत थी। लोग उनके इल्म व फजल का जिक्र करेंगे, उनकी तसनीफात का जिक्र करेंगे, उनकी खिताबत का जिक्र करेंगे, उनकी दीनी खिदमात का जिक्र करेंगे, उन्होंने अपने सूबे में तालीम के लिए जो खिदमात अंजाम दी उनका जिक्र करेंगे। इसमें शुबा नहीं कि इन सब बातों में वो हम सबके ममदूद थे, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे हमेशा गिरफ्तार किए रखा उनके मामले में, वो उनकी इंसानियत थी। वो कमाल इंसानियत का बेहतरीन नमूना थे। उनको जिस शख्स ने भी करीब से देखा है, वो ये जानता है कि उनका हिल्म, उनकी मतानत, उनकी इंसान दोस्ती, उनके चेहरे पर हर लहजा खेलता हुआ तबस्सुम, ये उनकी शख्सियत का नागुज़ीर हिस्सा बन चुका था। इस 20 साल के अरसे में मुझे एक दफ़े भी ये याद नहीं है कि कभी उनसे कोई शिकायत पैदा हुई हो, उनके रवैये में कोई चीज़ इंसानियत के आला मदारिज के ख़िलाफ़ महसूस की हो। वो हमेशा अपने मेयार को कायम रखते थे। बातचीत में, गुफ्तगू में, मामलात में बड़ी बुलंद पाया शख्सियत थे, और मैं समझता हूँ कि उनका असली हुस्न यही था। उन्होंने जिस चीज़ को हक समझा, अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ किए रखी। हमेशा अमन के पयाम्बर रहे, अपनी बात इस्तदलाल के साथ कहते रहे। हमारा फ़िक्र जैसा कुछ भी है, उसको उस अपने इलाके में आम करने में उनका गैर मामूली किरदार रहा। उन्होंने उसकी वजाहत के लिए किताबें लिखीं, उन्होंने उसकी वजाहत के लिए तकरीरें कीं, वो सेमिनारों में गए, वो मजालिस में गए, और पूरे जोर के साथ, पूरे इखलास के साथ, पूरी अजीमत के साथ वो हमेशा इस हक की शहादत देते रहे। वो दावत हक के शहीद हैं, उन्होंने इसी राह में अपनी जान कुर्बान की है। ये आप जानते हैं कि इस मौके पर जबकि वो हमें छोड़कर चले गए हैं, मेरे जैसे शख्स के जज्बात क्या हो सकते हैं। वो अपने एक भाई से महरूम हो गया है, और जो अजीम मर्तबा उनको शहादत की सूरत में मिला है, उसका तो जब मैं तसव्वुर करता हूँ तो बस यही कहता हूँ कि हसरत आती है कि अफसोस ये मैं क्यों ना हुआ। उनके लिए सरासर दुआ हूँ कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। आप अगर महसूस ना फरमाएं तो चंद अशार उनके बारे में हो गए थे, वो मैं आपको सुना देता हूँ,
ज़रूर ज़रूर जावेद
उससे उनकी शख्सियत का कुछ अंदाज़ा आपको हो जाएगा। हमारे दरमांदा कारवां में वो एक मताए गिरां बहा था, हज़ार रस्तों के पेचो खम हों वो फिर भी उम्मीद का दरा था। हमारे दरमांदा कारवां में वो एक मताए गिरां बहा था, हज़ार रस्तों के पेचो खम हों वो फिर भी उम्मीद का दरा था। वफा का पैकर जुनू की हर राह का मुसाफिर वो मर्द मैदान, वगा हो या आशती, मोहब्बत के हर करीने से आशना था। जमाल भी था कमाल भी था, मगर वही बात थी कि गोया दरख्त को खुद उसी के फल ने जमी की जानिब झुका दिया था। जमाल भी था कमाल भी था, मगर वही बात थी कि गोया दरख्त को खुद उसी के फल ने जमी की जानिब झुका दिया था। वो कत्लगाहों में शाखे जैतून लेके फिरता रहा हमेशा, वो कत्लगाहों में शाखे जैतून लेके फिरता रहा हमेशा, अगरचे बरसों से अपने काबिल के इरादों को जानता था। यतीम बच्चों का बाप बनकर सरों पे रखता था हाथ उनके, यतीम बच्चों का बाप बनकर सरों पे रखता था हाथ उनके। वो अपने आका की पैरवी में कई गरीबों का आसरा था, उसी से लड़ने निकल पड़ा था तमाम तारीख आंधियों से, उसी से लड़ने निकल पड़ा था तमाम तारीख आंधियों से। अगरचे मिट्टी का उसके हाथों में टिमटमाता हुआ दिया था, इसी तमन्ना में जी रहे थे, हुई सआदत नसीब उसके, इसी तमन्ना में जी रहे थे, हुई सआदत नसीब उसके, सबब यही है कि इस तमन्ना में हमसे आगे बड़ा हुआ था।
गांधी साहब, आपकी इस खूबसूरत नज़म से जहां डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान से आपके बेपाया कलबी ताल्लुक़ का इजहार होता है, वहीं उनकी शख्सियत के नुमायाँ पहलू भी बड़ी खूबसूरती से उजागर हो जाते हैं। हमें मालूम है एक अरसे तक उनकी आपसे इल्मी रफाकत रही। आप हमें उनकी इल्मी सोच और उसके इर्तकाई सफ़र के बारे में कुछ बताइए।
वो आज से 20 साल पहले मेरे पास पहली मरतबा तशरीफ़ लाए थे। उनकी अहलिया इशराक की कारी थी, और अगर आप जानते हैं तो आपके इलम में होगा कि वो ख़ुद भी डॉक्टर थी। उन्होंने मेरे नाम एक ख़त लिखा और ये कहा कि मेरे शोहर ने एक किताब लिखी है पाकिस्तान का मुस्तकबिल के उनवान से, उसमें उनके सामने कुछ मजहबी लिहाज से उलझने हैं, वो उन पर गुफ्तगू के लिए आना चाहते हैं, तो मुलाकात का कोई वक्त ख़ास कर लीजिए। चुनाचे उन्हीं का ख़त लेकर वो मेरे पास तशरीफ़ लाए, और इस पहली मुलाकात के बाद मेरे और उनके दरमियान बहुत से मौजूआत पर गुफ्तगू हुई। उसके बाद वो कई दिन मेरे पास तशरीफ़ फरमा रहे, इसमें इख्तलाफ भी हुआ, इत्तेफाक भी हुआ। फिर जुमला मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी हद तक उन्होंने इस फ़िक्र को हज़म कर लिया था और इसी के अलमबरदार थे। बाज़ ताबीरात में इख्तलाफ हो सकता है, वो ख़ुद एक साहिब फ़िक्र आदमी थे, और जिस तरह मुझे भी अपने असातिज़ा से इख्तलाफ हो जाता है, उन्हें भी मुझसे बाज़ चीज़ों में इख्तलाफ रहता था।
सही,
ताहम बसियत मजमू वो इसी चीज़ को लेकर उठे, इसी के लिए लोगों के सामने शहादत देते रहे, और इसी लिए उन्होंने अपनी जान दी है। जहाँ तक उनकी तसनीफ़ात का ताल्लुक है, उसमें उनके सामने बड़ा मकसद ये होता था कि एक आम आदमी को बात समझा दी जाए। फिर बहुत सी चीज़ें उन्होंने उस ज़माने में भी लिखी हैं जब अभी मैंने मीज़ान को मुकम्मल नहीं किया था। अलबयान तो खैर अभी भी पाया तकमील तक नहीं पहुंची,
सही
और उनके लिए ये भी मुमकिन नहीं होता था मर्दान में रहने की वजह से कि वो हर वक्त मुझसे इस्तफादा कर सकें। तो इसलिए बाज़ मामलात में हो सकता है कि मेरे ज़ाविया नज़र में और उनके ज़ाविया नज़र में लोगों को फ़र्क नज़र आए। बिलमूम ये होता था कि जब गुफ्तगू होती थी तो इत्तफाक हो जाता था।
सही गांधी साहब, अगर हम डॉक्टर साहब के इल्मी और दावती काम पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि उन्होंने जहादो कताल समेत इंतहाई मुश्किल मौजूदात पर कलम उठाया और इंतहाई शिद्दत पसंदी के माहौल में बग़ैर कोई दबाव कबूल किए अपने काम को जारी रखा। लेकिन इस सारे अरसे में उन्होंने शाइस्तगी, मतानत, नरमी और दलील का दामन हाथ से न छोड़ा, जबकि दीगर मजहबी तबकात में हमें सख्ती का अंसर नमाया नज़र आता है। आप डॉक्टर साहब की शख्सियत के इस पहलू के बारे में हमें कुछ बताइए।
ये उनकी सरिश्त में था, अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसा था, ये उनके खमीर में चीज़ डाल दी गई थी। कुदरत जब अपनी महबूब शख्सियात को तख्लीक करती है तो बाज़ गैर मामूली चीज़ें उनके अंदर वदियत कर देती है।
सही
ये हिल्म, ये मतानत, ये शाइस्तगी, ये तहजीब, ये नरम खुई, उनका यही कमाल था। और हकीकत यह है कि मेरे तो जहन में जब उनकी तस्वीर आती है उनके तबस्सुम के साथ आती है। वो ऐसे ही थे, उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। मैंने अभी शायद जिक्र किया है कि 20 साल की रफाकत के दौरान में
जी
वो इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर रहे। उसमें ज़ाहिर है कि इख्तलाफात भी हो जाते थे, दूसरे लोगों के साथ भी कोई शिकायत हो सकती थी, लेकिन हमेशा वो सुलह जू रहे, किसी के साथ कभी उनके यहाँ कोई नशेब फराज नहीं आए। ताल्लुकात की जो सतह तय हो गई वो हमेशा उसकी पासदारी करते थे। उनकी निगाह مخاطب کے اخلاص پر ہوتی تھی اور اس کے لحاظ سے بات کرتے تھے. غصہ تو معلوم ہوتا ہے کبھی ان کو آتا ہی نہیں تھا,
صحیح
ہمیشہ بڑی تہذیب اور شائستگی کے ساتھ بات کرتے تھے. اپنوں کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ تھا, غیروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا.
گاندھی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی شہادت سے پاکستان میں بالعموم اور خیبر پختونخوا میں بالخصوص آپ کے خیال میں کیا خلا پیدا ہوا ہے؟
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری قوم ایک بڑے آدمی سے محروم ہو گئی ہے, اور کسی قوم کی یہ بڑی محرومی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی شخصیات کھو بیٹھے. وہ عربی زبان میں ایک مصرعہ ہے کہ اداؤنی و ای فتن اداؤ, انہوں نے میرے جیسے نوجوان کو کھو دیا اور دیکھو کیسے نوجوان کو کھو دیا.
صحیح، بے شک،
حقیقت یہ ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہے, لیکن اس قوم کو شاید اس کا احساس ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی اپنے بلوغ کے اس مقام تک نہیں پہنچی کہ اپنی اصل خیر خواہ شخصیتوں کو پہچان سکے.
صحیح. اور آپ کے خیال میں ان کی کمی سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو کیسے اور کون پورا کر سکتا ہے؟
دیکھیے, یہ تو خدا کے کام ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی ناگزیر نہیں ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ پتھروں کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دے. دین اس کا ہے, دعوت اس کی ہے, پیغام اس کا ہے, ہم میں سے کوئی بھی ناگزیر نہیں ہے. ہم چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ اپنے دین کے دوسرے خدام پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی شفقت سے اور اللہ کی محبت سے انسانوں کے ساتھ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو موقع ملا ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدمت کریں, لیکن ہم خدام ہیں, ہم کوئی دین کے محسنین نہیں ہیں, دین کے خدام ہیں. وہ بھی دین کے خدام میں سے ایک خادم تھے. اللہ ہمیں خدمت کی توفیق دے, اس پہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا دین ہم پر نہیں کھڑا, اس کا دین اس کی اپنی حکمت کے تحت قائم ہے اور وہ اس کے اسباب پیدا کرتا رہے گا.
ہمارے مذہبی طبقے کی شدت پسندی سے نہ صرف جدید ذہن اسلام سے دور ہے بلکہ عالم اسلام میں بھی اسلام کا غلط تاثر بن چکا ہے، جبکہ دوسری طرف فاروق صاحب جیسے معتدل مزاج مذہبی اسکالر کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ گاندھی صاحب، آپ اس کی اصلاح کے لیے کیا اقدامات تجویز کرتے ہیں؟
اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ہم ایک بڑی تحریک برپا کریں عالم اسلام میں, جو ری فارمیشن آف مسلم ریلیجیس تھاٹ کی تحریک ہو, یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کی تشکیل جدید. علامہ اقبال نے اپنی کتاب کا نام یہی رکھا تھا, ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. کتاب میں جو کچھ انہوں نے فرمایا اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, اتفاق بھی کر سکتے ہیں. میں بھی ان کے بہت سے نقطہ نظر سے اختلاف رکھتا ہوں, لیکن بنیادی طور پر وہ کام مسلمانوں میں ہونا چاہیے. مسلمانوں کے مذہبی فکر میں ایسا تعفن پیدا ہو چکا ہوا ہے اور اس طرح کا جمود در آیا ہے کہ جب تک اس کو توڑ نہیں دیا جائے گا اور اس کو قرن اول میں جو اسلام کی تعبیر تھی اس کی روشنی میں جانچ کر پرکھ کر دوبارہ ایک نئی صورت میں تشکیل نہیں دیا جائے گا, اس وقت تک ہم صورتحال کا مقابلہ کر نہیں سکتے. ابھی تک ہم اس طرح کی کوئی تحریک برپا نہیں کر سکے. اصل میں یہ جو میری کچھ تھوڑی بہت کاوش ہے یا مجھ سے پہلے بعض بزرگوں کی کاوشیں ہیں یا ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کی جدوجہد ہے, یہ ابھی انفرادی کوششیں ہیں.
صحیح.
اس کو جب آپ ایک موومنٹ, ایک تحریک کی صورت دیں گے, اور یہ میں نے جس طرح کہ اس کو نام دیا ہے, یہ مذہبی فکر کی تشکیل جدید کے لیے ناگزیر ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا کے سامنے دعوت کے صحیح مقام پر کھڑا نہیں کر سکتے.
گاندھی صاحب، ڈاکٹر محمد فاروق خان کی شخصیت کے برعکس ہمارے ہاں مذہب سے وابستہ لوگوں میں سختی کا عنصر غالب ہو جاتا ہے، آپ اس صورت احوال کی اصلاح کا کیا نسخہ تجویز کرتے ہیں؟
خدا نے اپنے آخری پیغمبر کی فطرت یہی بنائی تھی, وہ نقل فطرت کے بہترین ثمر تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک, کہ اے پیغمبر اگر آپ درست خو ہوتے اور سخت روح ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ گئے ہوتے. ان کی کریم النفسی پر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے, ان کے لیے رعوف و رحیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو ہمارے سامنے اپنے پیغمبر کا اسوہ ہونا چاہیے. میرا احساس یہ ہے کہ اس میں کچھ تو جو لوگ مذہبی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کو جس طرح کی تربیت دی جاتی ہے اس کا نقص ہے, اور دوسرے مذہبی فکر میں بھی بعض چیزیں ایسی درائی ہیں جن سے اس کو نجات دلانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کی طبیعت میں نرمی فطری طور پر تھی, پھر جس فکر کے وہ علمبردار بن کر کھڑے ہوئے وہ فکر چونکہ مبنی اس چیز پر ہے کہ ہمارا رشتہ غیر مسلموں کے ساتھ, نہ ماننے والوں کے ساتھ دعوت کا ہے. ہمارا ہتھیار صرف استدلال ہے, ہمیں اپنی بات دلیل کے ساتھ بیان کرنی ہے. جب آپ اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے اندر سختی درآئے या आप किसी के साथ कोई ज्यादती करें या आप किसी के इखलास पर हमला करें, आप अपनी दलील पेश करेंगे और ख़ुद भी इस मुकाम पर खड़े होंगे कि हो सकता है कि हमारी बात में गलती हो, दूसरा उसको वाज़े कर देगा तो हम उसको कबूल कर लेंगे। ये जगह है जिस जगह पर चूंकि हमारे मजहबी रहनुमा बिलमूम खड़े ही नहीं होते, तो इस वजह से उनके यहाँ चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद दुरुस्ती आ जाती है।
गांधी साहब, आप डॉक्टर फारूक के इल्मी और दावती सफ़र में शरीक रफ़का के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे?
मैं उन सब से यही कहूँगा कि वो डॉक्टर साहब के महासिन को सामने रखें। उन्होंने जिस तरह मेहनत की, जिस तरह जद्दोजहद की, जिस इखलास के साथ की, ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक की, ला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून का नमूना बन के जिए, वो भी अपने सामने यही चीज़ रखें। सबसे बड़ा उस्वा तो अल्लाह के पैगंबर का उस्वा है, लेकिन करीब की शख्सियात भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन का ज़रिया बनती हैं। डॉक्टर साहब की शख्सियत के इस पहलू को सामने रख कर वो कोशिश करें कि हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, अज़म के साथ ये खिदमत अंजाम दें। अपने मुल्क में रह के अंजाम दे सकते हैं, वहाँ अंजाम दें, मुल्क से बाहर निकल कर अंजाम दे सकते हैं, वहाँ जाके अंजाम दें, लेकिन ये समझ लें कि ये एक बड़ा काम है जिसकी अभी पैदा की गई है। इसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हज़ारों लोगों की ज़रूरत है। इसको एक तहरीक में बदलना चाहिए, एक ऐसी तहरीक जो मजहबी फ़िक्र में एक इनकलाब बरपा कर दे और इस्लाम को उसके सही चेहरे के साथ लोगों के सामने पेश करे।
गांधी साहब, आखिर में आप डॉक्टर साहब की शहादत के इस अलमनाक सहने के जिम्मेदारान के लिए कुछ कहना चाहेंगे, जिन्होंने अल्लाह के रसूल की सुन्नत के बरक्स दलील की बजाय जुल्म और जबर का रास्ता अख्तियार करके उम्मत मुस्लिमा को ना सिर्फ एक अजीम हस्ती से महरूम कर दिया है बल्कि इस्लाम के चेहरे को भी मजीद मस्क किया है?
उनकी खिदमत में मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूंगा कि वह अपने आप को दारोगा न समझें, अपने आप को दाई बनाएं, दूसरों की बात भी तहम्मुल के साथ सुनें, इस्तदलाल के हथियार के साथ सामने आएं। ये जुल्म जो उन्होंने किया है और इस तरह के मजालिम जो इससे पहले वो करते रहे हैं, मुझे अंदेशा है कि खुदा की बारगाह में कहीं उनसे भी वही सवाल न किया जाए कि वईज़ल मऊदत तो सोएलत बेअय्य ज़म्बिन कुतलत, जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा तो उसे किस गुनाह में मार दिया गया।
गांधी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया। सामईन कराम, हम आज के अपने प्रोग्राम का अख्तिताम इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान के दर्जात को बुलंद करे, हमें उनके मिशन को जारी रखने का आज़म और हौसला अता करे, और बहैसियत कौम और उम्मत हमें सब्र, बर्दाश्त, हिम्मत और इखलाक के आला तरीन दर्जे पर फायज़ होने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।